साहित्य स्वरूप विवेचन। साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए हिंदी साहित्य कोष के रचयिताओं ने लिखा है, साहित्य यानी सहित धनयत प्रत्यय। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहभाव अर्थात साथ होना। इस प्रकार सार्थक शब्द मात्र का नाम साहित्य है। यह व्याख्या किसी व्याकरणाचार्य के मस्तिष्क को भले ही संतुष्ट कर दे, किंतु एक सामान्य विद्यार्थी की जिज्ञासा इससे शांत नहीं होती। यह तो ठीक है कि साहित्य से सहभाव ध्वनित होता है, किंतु सहभाव किसका? वह सहभाव शब्द और अर्थ का ही हो, ऐसा संकेत इस शब्द में कहीं नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने साहित्य में से सहित अर्थात सधनहित के साथ यानी हित के साथ को पृथक करते हुए हितकारक रचना को साहित्य बताया है, किंतु यह व्याख्या भी सर्वांश में सत्य सिद्ध नहीं होती। एक अच्छे सुंदर चिकने पत्र पर रंग बिरंगे शब्दों में मुद्रित वह रचना भी, जिसकी एक ओर अशोक चक्र तथा दूसरी ओर बैंक का नाम, गवर्नर के हस्ताक्षर, देय राशि व क्रम संख्या आदि अंकित होते हैं, किसी दरिद्र नारायण के भक्त के लिए कम हितकारक नहीं होती। किंतु इसी से क्या हम उसे साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं? वस्तुतः इन व्याख्याओं को अर्थ से सीधा संबंध नहीं है। किसी प्रकार खींचतान प्रचलित अर्थ के साथ साहित्य शब्द की संगति बैठाने का प्रयत्न किया गया है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए इसके इतिहास पर दृष्टिपात करना उचित होगा। कहा जाता है कि साहित्य शब्द का प्रचलन इस अर्थ में 7वीं-8वीं शती से हुआ। इसके पहले संस्कृत में साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का ही प्रयोग मिलता है। भामह, राजशेखर, भोजराज, कुंतक प्रभृति आचार्यों ने काव्य की परिभाषा करते हुए शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य बताया है। द्रष्टव्य साहित्य विज्ञान प्रथम खंड पृष्ठ 19-20। तथा इसी प्रसंग में उन्होंने सहितव सहभाव आदि का उल्लेख किया, पर आगे चलकर शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर केवल सहभाव साहित्य ही रह गया। जिस प्रकार रेलवे ट्रेन में से अब केवल रेल या ट्रेन ही प्रयुक्त होते हैं, शेष दो शब्द प्रायः छोड़ दिए जाते हैं, वैसे ही शब्द और अर्थ का साहित्य के स्थान पर केवल साहित्य का ही प्रयोग चल पड़ा। वस्तुतः भाषा विज्ञान के अनुसार प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति के कारण शब्दों का प्रचलन प्रयोग एवं अर्थ विकास इस प्रकार प्रायः होता रहता है। अतः साहित्य शब्द का यह प्रयोग भी इसी प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति का परिणाम है। यह भी भाषा विज्ञान का नियम है कि जब एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उनमें से किसी एक का अर्थ संकुचित या परिवर्तित हो जाता है। जब संस्कृत में काव्य और साहित्य दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होने लगा तो आगे चलकर काव्य का अर्थ संकुचित हो गया, वह केवल कविता तक सीमित रह गया, जबकि साहित्य का प्रयोग व्यापक रूप में कविता, नाटक, उपन्यास, समीक्षा आदि सभी विधाओं कोष्टक में मुख्यतः गद्यात्मक रचनाओं के लिए होने लग गया। इस प्रकार साहित्य शब्द काव्य का परवर्ती एवं उत्तराधिकारी होते हुए भी आज अपने पूर्वज से अधिक समृद्ध, व्यापक एवं विकसित है। आधुनिक युग में साहित्य शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द की भांति दो अर्थों में होता है। व्यापक अर्थ में वह समस्त लिखित एवं मौखिक रचनाओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि संकुचित अर्थ में वह काव्य के पर्याय के रूप में गृहित होता है। दूसरे शब्दों में वह एक ओर समस्त प्रकार के ग्रंथ समूह को सूचित करता है तो दूसरी ओर वह एक विशेष कोटि की रचनाओं तक ही सीमित है। पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक को ज्ञान का साहित्य कहा है और दूसरे वर्ग की रचनाओं को भावना या शक्ति का साहित्य की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध विद्वान डी क्विंसी ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा है कि जहां ज्ञान के साहित्य का लक्ष्य कुछ सिखाना होता है, वहां भावना के साहित्य का लक्ष्य भावनाओं को जागृत करना होता है। एक में तथ्यों और उपदेश की प्रधानता होती है, जबकि दूसरे में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तुत लेख में हमारा विवेच्य भावना का साहित्य ही है, जो कि गद्य और पद्य में लिखी हुई सही प्रकार की कलापूर्ण रचनाओं, कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि से संबंधित है। परिभाषा भारतीय दृष्टि से साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए हमारे अनेक प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों ने साहित्य की विभिन्न परिभाषाएं निश्चित की हैं, जिनमें से कुछ यहाँ विचारणीय हैं। आचार्य भामह छठी सातवीं शताब्दी ने अपने काव्यालंकार में लिखा था, शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होता है। तो दंडी के विचार में इष्ट अर्थ के से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है। इसी प्रकार आचार्य वामन गुण तथा अलंकार से संस्कारित शब्दार्थ को साहित्य मानते हैं, तो राजशेखर के विचारानुसार गुण से युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य कुंतक ने किंचित विस्तार से परिभाषा करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हों कि न तो कोई न्यून हो और न कोई अधिक हो, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे चलकर मम्मट 11वीं शती ने दोष रहित गुणों से मंडित शब्दार्थ को भले ही वह कहीं कहीं अलंकार शून्य हो काव्य माना है, तो दूसरी ओर आचार्य विश्वनाथ जो 14वीं शती के थे ने रसात्मक वाक्य को तथा पंडित राज जगन्नाथ जो 17वीं शती के थे ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य या साहित्य माना है। वस्तुतः ये सब परिभाषाएँ विद्वानों के अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत हैं, जिससे वे एकांगी एवं अपूर्ण सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए भामह ने शब्द और अर्थ के मेल को साहित्य माना, पर शब्द और अर्थ का मेल तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में होता है, क्योंकि निरर्थक शब्दों का उच्चारण या तो कोई अबोध शिशु करता है या प्रलाप करने वाला पागल। क्या साहित्येतर रचनाओं में शब्द और अर्थ का साहचर्य नहीं होगा? ऐसी स्थिति में केवल शब्दार्थ के साहचर्य को ही साहित्य बताना उचित नहीं है। हाँ, इससे एक विशेषता का पता अवश्य लगता है कि साहित्य में शब्द धन अर्थ अर्थात भाषा का प्रयोग होता है, बिना भाषा के कोई भी साहित्य नहीं रचा जा सकता। दंडी, वामन, राजशेखर, कुंतक, मम्मट प्रभृति ने शब्दार्थ या भाषा के अतिरिक्त इष्ट अर्थ, गुण, अलंकार, मनोहर विन्यास, दोष रहित आदि विशेषताओं का परिगणन किया। सच पूछें तो ये सारी विशेषताएं एक ही बात की सूचक हैं कि साहित्य में सौंदर्य या आकर्षण होता है। गुण, अलंकार, रीत आदि सबका लक्ष्य साहित्य में सौंदर्य या आकर्षण शक्ति उत्पन्न करना है। इसी शक्ति के कारण साहित्य के शब्दार्थ इष्ट या प्रिय अथवा रोचक प्रतीत होते हैं। सामान्य भाषा और साहित्य के शब्दार्थ में ही अंतर है। सामान्य प्रयोगों में सर्वत्र ही आकर्षण नहीं होता, जबकि साहित्य में सर्वत्र आकर्षण होता है। अतः इन सारी विशेषताओं का समाहार एक शब्द में करते हुए कहा जा सकता है कि साहित्य में आकर्षण होता है। आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने क्रमशः रसात्मकता और रमणीयता को साहित्य का आधार माना है, पर प्रश्न यह है कि इन विशेषताओं का पता कैसे चले। किसी भी रचना में रसात्मकता और रमणीयता के अस्तित्व का ज्ञान उनके आस्वादन से ही हो सकता है। जिस रचना के आस्वादन से रस या आनंद की अनुभूति होती है, उसी में रसात्मकता और रमणीयता स्वीकार की जाती है। अस्तु, आनंद की अनुभूति साहित्य की तीसरी विशेषता है। साहित्य की इन तीनों ही विशेषताओं का समन्वय करते हुए साहित्य विज्ञान में साहित्य की सामान्य परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की गई है, उद्धरण चिन्ह साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण से युक्त रचना है, जिसके अर्थबोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है, उद्धरण चिन्ह बंद। हमारे विचार से यह परिभाषा साहित्य की सामान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। पाश्चात्य दृष्टि। पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य के विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ यहाँ उल्लेखनीय हैं। आचार्य अरस्तु ने, उद्धरण चिन्ह, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति को काव्य, उद्धरण चिन्ह बंद, या साहित्य की संज्ञा दी है। सिडनी के विचार से काव्य या साहित्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनंद प्रदान करना है, उद्धरण चिन्ह बंद। कॉलरिज के अनुसार काव्य रचना का विशिष्ट प्रकार है जिसका तत्कालिक लक्ष्य प्रसन्नता प्रदान करना होता है, उद्धरण चिन्ह बंद। शैली के विचार से काव्य सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है। हडसन ने भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति को काव्य माना है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिनसे काव्य या साहित्य को समझना कठिन है। वस्तुतः ये परिभाषाएँ अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य या साहित्य क्या है इसका उत्तर देने के स्थान पर काव्य और कवि, काव्य और पाठक तथा काव्य और जीवन के संबंध में को सूचित किया है, जिससे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। वस्तुतः इस साहित्य के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं पक्षों को तो सूचित करते हैं, किंतु इनमें से किसी को भी साहित्य की एक सर्वांगीण परिभाषा के रूप में स्वीकार करना कठिन है, अस्तु, हमारे विचार से जो परिभाषा पीछे प्रस्तुत की जा चुकी है वह इन सही परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक निर्दोष एवं व्यापक है। फिर भी साहित्य के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए केवल परिभाषा का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, उसके विभिन्न लक्षणों एवं तत्वों का बोध भी अपेक्षित है। अतः आगे इन्हीं की चर्चा की जाएगी। साहित्य के भेदक लक्षण। साहित्यिक और असाहित्यिक कृतियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए साहित्य के तीन भेदक लक्षण किए जा सकते हैं। एक, स्थायित्व। दो, व्यक्तित्व का प्रतिफलन। और तीन, रागात्मकता। साहित्य और असाहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि में सबसे पहला अंतर स्थायित्व का होता है। जहाँ विज्ञान के क्षेत्र में एक ही विषय पर एक पुस्तक के स्थान पर दूसरी पुस्तक आने पर पहली का स्थान गौण हो जाता है या एक का स्थान दूसरी ग्रहण कर लेती है, पर साहित्य में ऐसा नहीं होता, जिससे साहित्य की प्रत्येक कृति का महत्व स्थायी बना रहता है। साहित्य में इस स्थायित्व का मूल कारण यह है कि उसमें रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव मिश्रित रहता है, जिससे उसी विषय पर दूसरे व्यक्ति की रचना पहली रचना के स्थानापन्न नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए भगवान राम के चरित्र को लेकर तुलसी, केशव एवं मैथिली शरणगुप्त तीनों ने प्रबंध काव्य लिखे, फिर भी तीनों का स्थान सुरक्षित है क्योंकि उन सब में उनके अपने अपने रचयिताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव अंकित है, जबकि गणित, भूगोल, कानून आदि साहित्येतर विषयों की कृतियों में ऐसा नहीं होता। अस्तु, जहाँ विज्ञान संबंधी रचनाओं में विषय सापेक्ष तथ्यों का प्रतिपादन होता है, जबकि साहित्यिक रचनाओं में व्यक्ति सापेक्ष भावनाओं और विचारों का, यही कारण है कि एक व्यक्ति की काव्य रचना का महत्व उसी विषय पर लिखी गई दूसरे व्यक्ति की रचना के पश्चात भी अक्षुण्ण रहता है। साहित्य का दूसरा लक्षण व्यक्तित्व का प्रतिफलन है। व्यक्तित्व क्या है? आजकल कुछ लोग शरीर की लंबाई, चौड़ाई और बाह्य वेशभूषा को ही व्यक्तित्व समझने की भूल करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थूल शारीरिक विशेषताएं भी व्यक्तित्व के एक अंग हैं, किंतु वे ही सब कुछ नहीं है। व्यापक दृष्टि से व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसका ज्ञान कोश, उसकी अनुभूतियाँ, उसका चरित्र, उसके वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी रुचि और उसके व्यवहार आदि के समन्वित रूप को लिया जाता है। साहित्य पर रचयिता के व्यक्तित्व के प्रभाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए हम दो उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हम चार वैज्ञानिकों को गुलाब के फूल के संबंध में कुछ लिखने के लिए प्रेरित करें और इसके पश्चात उनके लेखों की परस्पर तुलना करें, तो पता चलेगा कि चारों ने लगभग एक जैसे ही तथ्यों का प्रतिपादन किया है। गुलाब के फूल में कौन कौन से तत्व हैं, उसका विकास किस तरह होता है, उसका रंग रूप और उसकी आकृतियों में क्या विशेषताएँ हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर चारों वैज्ञानिक प्रायः एक जैसा ही देंगे। किंतु यदि चार कवि इसी गुलाब के फूल के संबंध में कविताएं लिखें, तो चारों की रचनाओं में परस्पर आकाश पाताल का अंतर होगा। एक जो प्रणय लोक का पथिक है, उस गुलाब के फूल में अपनी प्रिया के रूप वैभव का दर्शन कर सकता है। दूसरा अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण उसी गुलाब के फूल की क्षणिक प्रफुल्लता के आधार पर संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन कर सकता है। तीसरा कवि जो यदि स्वभाव से मनमौजी है, तो गुलाब के फूल की भांति मुस्कराते और हंसते हुए जीवन व्यतीत करने का संदेश दे सकता है। चौथा कवि उसी गुलाब के फूल को गरीबों का खून चूसकर लाल होने वाले पूंजीपतियों का प्रतीक बता सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कवि की रचना में उसकी विचारधारा, अनुभूत आदि वैयक्तिक विशिष्टताओं के कारण परस्पर गहरा अंतर आ जाता है। इसी अंतर को व्यक्तित्व का प्रतिफलन कहते हैं, जिसके कारण साहित्यिक रचनाएँ अमर हो जाती हैं। साहित्य का तीसरा प्रमुख लक्षण उसकी रागात्मकता को बताया गया है। साहित्य में निर्जीव और शुष्क तथ्यों का वर्णन नहीं होता, अपितु भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाशन होता है। जहाँ विज्ञान के तथ्य हमारे मस्तिष्क को ही प्रभावित करते रह जाते हैं, वहाँ साहित्य में चित्त भावनाएं हमारे हृदय को ही आंदोलित करती हैं। अपनी भावोत्पादनी क्षमता के कारण ही साहित्य साहित्य की संज्ञा प्राप्त करता है। साहित्य के तत्व। साहित्य को सम्यक रूप से समझने के लिए उसके लक्षणों के साथ साथ उसके प्रमुख तत्वों की जानकारी भी अपेक्षित है। साहित्य के मुख्यतः चार तत्व निर्धारित किए गए हैं। एक, भाव। दो, कल्पना। तीन, बुद्धि। और चार, शैली। साहित्य का सर्वप्रमुख तत्व भाव ही है, यही उसकी आत्मा है। जैसा कि पीछे बताया गया है, साहित्य का सर्वप्रमुख लक्षण रागात्मकता है। जिसके लिए भावों का चित्रण अपेक्षित है। स्थूल घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्त के निरूपण की अपेक्षा साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक महत्व है। दूसरे, साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान वृद्धि करना नहीं अपितु उसके हृदय को भावनाओं से आप्लावित कर देना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति भावों के चित्रण के द्वारा संपन्न होती है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने साहित्य के इस आत्मा भाव तत्व को आज से 2000 वर्ष पूर्व ही पहचान लिया था। यदि आचार्य भरत मुनि ने स्पष्ट रूप से साहित्य का लक्ष्य भावानुभूति को घोषित करते हुए भावनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण किया है। उन्होंने भावों के 2 वर्ग किए हैं, संचारी और स्थायी। आगे चलकर भोजराज, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भरत के भाव संबंधी विवेचन को और आगे बढ़ाया। कहना न होगा कि भारतीय आचार्यों द्वारा किया गया भावों का विवेचन आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत संगत एवं शुद्ध है। आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही भाव की 2 कोटियां हैं, 1 इमोशन और 2 सेंटीमेंट। इमोशन और सेंटीमेंट क्रमशः संचारी भाव और स्थायी भाव से गहरा साम्य रखते हैं। भाव के संबंध में भारतीय आचार्यों ने 3 अंगों का विवेचन किया है, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी इन्हें स्वीकार किया है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हम अपने प्रबंध साहित्य विज्ञान में कर चुके हैं। साहित्य का दूसरा तत्व कल्पना है। साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही संपन्न होता है। एक साधारण से साधारण घटना को भी कवि कल्पना के रंग में रंग कर ऐसा भव्य रूप प्रदान कर देता है कि वह हमारे हृदय को बलात् आकर्षित कर लेता है। उदाहरण के लिए हम एक समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि जर्मनी का एक जहाज डूब गया जिसमें 400 व्यक्ति सवार थे। इस समाचार को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में थोड़ी हलचल भले ही हो जाए, किंतु उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम शोक से अभिभूत होकर आंसू बहाने में लग जाएं। किंतु जब कवि इसी घटना को कल्पना के द्वारा चित्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत करेगा तो 400 व्यक्ति तो क्या, एक व्यक्ति के भी डूबने की घटना हमारे हृदय में करुणा की शत शत धाराएं उद्वेलित कर सकती हैं। वह हमें बताएगा कि उस डूबने वाले जहाज में कौन कौन व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके हृदय में अपने प्रियजनों के मिलन की उत्कंठा किस प्रकार उद्वेलित हो रही थी, वे स्वदेश गमन के लिए किन किन स्वप्नों को संजोए हुए थे, उनके घर पर उनकी असहाय वृद्धा माँ या चिर वियोगनी पत्नी या दर्शनों की लालसा से विभोर छोटे छोटे भोले बालक किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जहाज डूबने लगा तो उस पर बैठे हुए प्राणियों की क्या दशा हो गई थी, किस प्रकार क्षण क्षण में पुरुष यात्रियों की चिंता, महिलाओं की चीख पुकार और बच्चों का करुण रोदन बढ़ता जा रहा था। जीवन के अंतिम क्षणों को सिंह की तरह आगे बढ़ता देखकर उन गौतुल्य यात्रियों का हृदय किस प्रकार शोक विह्वल होकर हाहाकार उठा था, और फिर उनके डूब जाने के समाचार को सुनकर चिर प्रतीक्षा में लीन उनके प्रियजनों की क्या दशा हो गई थी। इन सबका चित्रण करता हुआ एक सच्चा कवि इस छोटी सी घटना का ऐसा वर्णन कर सकता है कि हमारा हृदय पिघल कर आंसुओं की धारा में बहने लगे। वस्तुतः कवि अपनी कल्पना के बल पर दूसरों के दुख सुख और दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वह हमारा दुख सुख बन जाए। परोक्ष की घटना को वह प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भाव को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसका श्रेय उसकी कल्पना शक्ति को ही है। काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि भी कल्पना के द्वारा ही की जाती है। न जाने हमारे कितने कवियों ने नारी के सूक्ष्म छवि के अंकन में अपनी अद्भुत कल्पना का परिचय दिया है। सुंदरियों के सामान्य रूप वैभव को उन्होंने चंद्र की ज्योत्सना, दामिनी की चमक, रजनी की शीतलता, ओस की तरलता, पुष्प की प्रफुल्लता आदि से समन्वित करके अलौकिकता प्रदान कर दी है। यही नहीं, संसार के असंख्य निर्जीव पदार्थों और प्रकृति के अगणित चेतनाविहीन रूपों को भी कवि की कल्पना ने सजीवता और चेतना प्रदान कर दी है। धरती की गोद में कलकल प्रवाहिनी सरिता को कालिदास की कल्पना ने एक ऐसी मधुविह्वला रमणी का रूप प्रदान कर दिया जिसके अगाध जलरूपी नितंबों से लहरों के रूप में उद्वेलित वस्त्र बार बार खिसका जा रहा था। नदी की चंचल तरंगों को उसने कामनी के उन चंचल कटाक्षों का रूप प्रदान कर दिया जो वह अपने किसी प्रिय की ओर निक्षेप कर रही हो। अमरुक शतक के रचयिता ने युवती बालाओं के द्वारा किए गए अपमान की मीठी घूट में ही स्वर्ग के अमृत की कल्पना करके अपने हृदयागार को तृप्त कर लिया। भर्तृहरि की कल्पना नारी के उरोज द्वय में एक ऐसे दुर्गम घाटी की रचना कर लेती है जहां अस्मर रूपी तस्कर विराजमान है और जो मन रूपी पथियों का सर्वस्व लूट लेता है। मैथिल कवि विद्यापति चंदन चर्चित पयोधरों में अपने इष्ट देव शिव की कल्पना करके ही कृतकृत्य हो जाते हैं। प्रेम पंथ के परिचायक पद्मावतकार की कल्पना रानी तो निर्जीव तोपों को ही मद्विह्वल गजगामिनियों का रूप प्रदान करके उन्हें युवकों का प्राण ले लेने वाली शक्ति से युक्त कर देती हैं। और आगे चलकर केशव, बिहारी, पद्माकर, भारतेंदु, प्रसाद, पंत और महादेवी की कल्पना तो जो चमत्कार दिखाती है उसका तो कहना ही क्या। वस्तुतः प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति की अपूर्व क्षमता, अद्भुत वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। वेदांतवादियों के यहाँ जो स्थान माया का है वही साहित्य में कल्पना का है। अंतर केवल इतना ही है कि उसकी माया सत को असत में, सूक्ष्म को स्थूल में और अलौकिक को लौकिक में परिवर्तित कर देती है, जबकि साहित्यकार की कल्पना असत को सत में, स्थूल को सूक्ष्म में तथा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित कर देने की विशेष शक्ति से भी विभूषित है। साहित्य जगत का सम्राट भाव और कल्पना उसकी दासी है, किंतु कभी कभी जब कल्पना भाव से भी आगे बढ़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप में करने लगती है तो साहित्य का वैभव नष्ट हो जाता है। भाव शून्य कल्पना साहित्य को कोरा चमत्कार बना देती है। बिहारी जैसे कवि जब इस तथ्य को भूलकर कल्पना का अत्यधिक आश्रय ग्रहण करने लगते हैं तो वहाँ काव्यात्मकता नष्ट हो जाती है। अतः साहित्य में कल्पना का उपयोग भावनाओं के चित्रण और विकास के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा वह महत्वहीन हो जाती है। साहित्य का तीसरा तत्व बुद्धि है। बुद्धि का संबंध तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों से है। साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का ही समावेश किया जाता है। इनके अभाव में कोरी भावनाओं का स्पंदन दुखी का चित्कार बन जाएगा तथा बुद्धि शून्य कोरी कल्पना में और पागल के प्रलाप में कोई अंतर शेष नहीं रह जाएगा। अंततः साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उनके उचित रूप में ही किया जाता है। कथा वस्तु की सूक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिए, घटनाओं के श्रृंखला को मिलाने के लिए और कार्य के अनुरूप फल दिखाने के लिए प्रत्येक प्रबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भावनाओं के सुदृढ़ ईंटों को वह विचारों के गारे से जोड़कर काव्य भवन का निर्माण करता है। अतः न्यूनाधिक मात्रा में साहित्य में बुद्धि तत्व भी सर्वत्र विद्यमान रहता है। कुछ साहित्यकार तो निजी विचारों एवं सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से ही साहित्य रचना में प्रवृत्त होते हैं। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साहित्य में विचारों को कहाँ तक स्थान देना चाहिए। हमारे विचार से विचारों या सिद्धांतों आदि का अविधा शैली में वर्णन न होकर उसके सूक्ष्म रूप में व्यंजना होनी चाहिए। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी कहीं भी यह नहीं लिखते कि दहेज प्रथा या वृद्ध विवाह बुरा है, किंतु उस उपन्यास के पढ़ने से विचार स्वतः ही पाठक के हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। विचारों का चित्रण उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक वे रचना के भाव सौंदर्य में बाधक हों। साहित्य की आत्मा या उसका प्राण भाव है, अतः उसे किसी भी स्थिति में ठेस नहीं लगनी चाहिए। भाव शून्य विचारों का वर्णन साहित्य की संज्ञा से वंचित करके उसे दर्शन, नीतिशास्त्र या उपदेश ग्रंथ का रूप दे देता है। अब साहित्य के चौथे तत्व शैली को लीजिए। कवि या साहित्यकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस ढंग से अपने भावों, विचारों या इतिवृत्त को व्यक्त करता है वही शैली है। शैली के अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का उपयोग, काव्य रूप आदि का समावेश किया जाता है। काव्य के प्रारंभिक तीन तत्व यदि उसके प्राण हैं तो शैली उसका शरीर है। जैसे बिना शरीर के प्राण नहीं टिक सकते, वैसे ही बिना भाषा आदि के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि साहित्य का भाव पक्ष उत्कृष्ट हो तो साधारण या दोषपूर्ण शैली से भी काम चल सकता है, किंतु सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसका भाव पक्ष और शैली पक्ष या कला पक्ष दोनों प्रौढ़ हों। किंतु जब कविगण कवि केशव की भांति शैली को ही सजाने में इतने अधिक लीन हो जाते हैं कि वे भाव पक्ष को सर्वथा भुला बैठते हैं तो काव्यत्व का हनन हो जाता है। हमारे कुछ आचार्यों जैसे वामन, कुंतक, भामह आदि ने भी शैलीगत गुणों को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया है। फिर भी उनके द्वारा शैली संबंधी सूक्ष्म गुणों की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म रूप से हुई है, जिसका महत्व कम नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली का संबंध कवि के व्यक्तित्व से माना है। इस प्रकार साहित्य के प्रमुख लक्षणों एवं उनके तत्वों की व्याख्या से अनंतर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के अनेक रूप एवं अनेक नाम हैं, उसी प्रकार साहित्य भी नाना रूपों और नाना संज्ञाओं से विभूषित है। उपर्युक्त लक्षणों और तत्वों का ज्ञान भी साहित्य के स्वरूप को आंशिक रूप में ही समझने में सहायता देता है। उसकी आत्मा का तो पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जबकि हमारे हृदय में भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाश हो, हमारे मस्तिष्क में गंभीर अध्ययन की ज्योति हो और हमारे व्यक्तित्व में साधना का बल हो। अस्तु, साहित्य क्या है और कैसा है इसका उत्तम और अधिक विस्तार से देने की अपेक्षा हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का परामर्श देते हुए कबीर के उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो उन्होंने ईश्वर के संबंध में प्रयुक्त किए थे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिवे कु शोभा नहीं देख्या ही परिमान। इस प्रकार साहित्य स्वरूप और विवेचन शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।